हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा से होती आई हैं। कभी सोचा है क्यों? क्यों कुछ रस्में, कुछ आदतें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, भले ही वो आज के समय में मतलब बेमतलब या बोझ लगने लगी हों?
आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे।
बिल्कुल।
और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा स्रोत है। ये 20वीं सदी के एक महान आध्यात्मिक सुधारक पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प का एक हिस्सा है।
हाँ, तो ये जो सत्संकल्प है ये असल में व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव के लिए लिए गए कुछ संकल्प हैं, कुछ प्रण हैं।
जी, और हम आज इसके 14वें संकल्प पर बात करेंगे। और ये संकल्प है तो बस एक लाइन का,
लेकिन इसमें एक पूरी क्रांति छिपी है ना?
बिल्कुल। संकल्प है परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे।
ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है।
लगता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि ईश्वर ने हम सबको एक कमाल की शक्ति दी है, विवेक।
सही गलत, अच्छा बुरा, इसमें फर्क करने की समझ।
हाँ, बिल्कुल वही। और मजे की बात यह है कि रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में, जैसे क्या खाएं, कहाँ जाएं, इसमें तो हम इसका खूब इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन जैसे ही कोई बड़ी सामाजिक परंपरा या कोई पुरानी रीति सामने आती है,
तो हमारे इसी विवेक पर जैसे ताला लग जाता है।
हाँ, हमारी सोचने समझने की शक्ति जैसे काम करना बंद कर देती है।
तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोल कर समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है।
चलिए शुरू करते हैं।
सत्संकल्प में ना एक बड़ी मजेदार तुलना की गई है। इसमें कहा गया है कि विवेक होते हुए भी जब इंसान बिना सोचे समझे परंपराओं के पीछे चलता है तो उसकी हालत भेड़ों के झुंड जैसी हो जाती है।
भेड़ों के झुंड जैसी?
हाँ, जैसे एक भेड़ अगर कुएं में गिर जाए तो बाकी सब भी आंख बंद करके उसके पीछे पीछे कूद जाती हैं। ये अंधानुकरण है।
ये उपमा तो एकदम सटीक बैठती है। अंधानुकरण मतलब बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए सिर्फ दूसरों को देखकर कोई काम करना, नकल करना।
हाँ, सत्संकल्प में बंदर का भी उदाहरण है जो नकल करने में माहिर होता है। जब मनुष्य का विवेक सो जाता है तो वो भी एक, क्या कहते हैं, सामाजिक नकलची बन जाता है। और यहीं से कई बुरी और हानिकारक आदतें हमारे जीवन में घुस आती हैं।
अच्छा, जैसे कि
सत्संकल्प में किन आदतों का जिक्र है?
इसमें चाय, बीड़ी, सिगरेट जैसे नशों का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, कोई भी बच्चा इन चीजों का स्वाद पसंद करके तो पीना शुरू नहीं करता। स्वाद तो कड़वा ही होता है, लेकिन वो अपने आसपास बड़ों को देखता है, समाज में इसका प्रचार देखता है, उसे लगने लगता है कि ये तो बड़े होने की निशानी है।
या शायद अमीर और मॉडर्न दिखने का तरीका है।
बिल्कुल, ये एक तरह का फैशन या स्टेटस सिंबल बन जाता है।
हाँ, एक दोस्त ने शुरू किया तो दूसरे ने भी कर लिया बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा।
एकदम। और ये देखा देखी का शौक कब एक मजबूत लत में बदल जाता है पता ही नहीं चलता,
और फिर इंसान फंस जाता है। जी, और इसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही मतलब गंभीर है।
तो सिर्फ सेहत का ही नुकसान नहीं होता होगा जैसा कि हम सब जानते हैं?
नहीं नहीं, नुकसान उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सत्संकल्प इसे बहुत साफ शब्दों में समझाता है। पहला तो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जो धीरे धीरे खोखला होने लगता है।
ठीक है।
दूसरा है आर्थिक नुकसान। इन चीजों पर पैसा पानी की तरह बहता है, लेकिन सबसे खतरनाक असर इंसान के स्वभाव पर पड़ता है।
स्वभाव पर? वो कैसे?
ये नशीली चीजें इंसान के अंदर धीरे धीरे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, आलस और शक जैसे मानसिक दुर्गुण पैदा कर देती हैं।
अच्छा।
इंसान की जो अच्छाई है, उसकी सहजता है, वो खत्म होने लगती है। और सबसे दुख की बात यह है कि अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि वो गलत कर रहा है। उसे अपनी बर्बादी दिखाई देती है, पर विवेक की शक्ति और हिम्मत की कमी के कारण वो उस जाल से बाहर नहीं निकल पाता। वो बस दूसरों की बनाई लकीर पर पिटता रहता है।
ये तो हुई व्यक्तिगत आदतों की बात, जिन्हें इंसान शायद अकेले छोड़ भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब बात बड़ी सामाजिक रीतियों की आती है तो ये लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती होगी।
बहुत मुश्किल।
वहां तो पूरा समाज आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर विवेक की सबसे बड़ी हार होती है। सत्संकल्प में समाज को दीमक की तरह खा रही कुछ कुरीतियों पर बहुत तीखा प्रहार किया गया है, जैसे शादी ब्याह में होने वाली फिजूल खर्ची।
हाँ, ये तो आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दिखावे के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई एक दिन में उड़ा जाते हैं।
इसी दिखावे के लिए सत्संकल्प में एक बहुत ही चौंकाने वाला शब्द इस्तेमाल किया गया है, नरभक्षी पिशाच।
नरभक्षी पिशाच मतलब आदमियों को खाने वाला राक्षस। शादी के खर्चे के लिए इतना कठोर शब्द?
हाँ, और जरा इसकी गहराई को समझिए। पूज्य गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फिजूल खर्ची एक राक्षस की तरह ही तो है, जो माता पिता के सर पे आप समझिए नंगी तलवार लेकर नाचता है। ये उनकी सालों की मेहनत, उनके सपने, उनका भविष्य सब कुछ होली की आग की तरह जलाकर राख कर देता है। ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं है, ये परिवारों की शांति और सुख की बलि है।
इसीलिए इसे नरभक्षी कहा गया है। अब समझ में आया कि ये भाषा इतनी तीव्र क्यों है। ये हमें झिझोड़ने के लिए है।
बिल्कुल।
और दहेज प्रथा के बारे में क्या कहा गया है?
उसके लिए तो और भी भयानक शब्द है, हत्यारा दहेज।
हत्यारा दहेज,
एक ऐसा हत्यारा जो छुरी लेकर हमारी बच्चियों का खून पीने के लिए समाज में खुलेआम घूम रहा है। सोचिए ये शब्द कितने दर्द और सच्चाई से भरे हैं। इनके अलावा मृत्यु भोज, तरह तरह के नेकचार, मुंडन और खासकर जेवर बनवाने की परंपरा, इन सब पर सवाल उठाए गए हैं।
जेवर पे तो आमतौर पर लोग सवाल नहीं उठाते, उसे तो स्त्रीधन और सुरक्षा की गारंटी माना जाता है।
बिल्कुल, और इसी सोच पर सत्संकल्प चोट करता है। वो कहता है कि जेवर में लगे रुपए में से 8 आने ही मुश्किल से हाथ में रहते हैं।
मतलब लगभग आधा पैसा तो बनवाई और दूसरी चीजों में ही चला जाता है।
हाँ, और उसके साथ जो मुसीबतें आती हैं वो अलग। चोरी का डर, सुरक्षा की चिंता, दूसरों के मन में जलन पैदा होना, अपने अंदर अहंकार आना, ये सब उस तथाकथित सुरक्षा की छिपी हुई कीमत है।
या मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर ये सारी बातें इतनी साफ हैं, अगर हर व्यक्ति अकेले में इन चीजों से परेशान है, तो फिर सामूहिक रूप से हम सब इन्हें ढो क्यों रहे हैं? ये कैसा विरोधाभास है?
यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, और इसका जवाब बस एक लाइन में है जो हर किसी के दिमाग में आता है।
लोग क्या कहेंगे?
हाँ, या जब सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। बस यही एक तर्क हमारे विवेक पर भारी पड़ जाता है।
सत्संकल्प में लिखा है कि ये उतना ही अविश्वसनीय है जितना कि एक बकरे का शेर की गर्दन मरोड़ देना।
मतलब विवेक शेर है और ये खोखली परंपरा एक बकरा।
जी, लेकिन हो यही रहा है कि बकरा शेर पर हावी है, और यही अविवेक हमें बीमार, दुखी और बुरे संस्कारों वाला बना रहा है। तो क्या हम हमेशा इसी भेड़चाल में चलते रहेंगे? क्या इन गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराओं से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? ये तो बहुत निराशाजनक लगता है।
नहीं नहीं, निराशा की बात नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव इसका एक बहुत ही सुंदर और उम्मीद भरा समाधान भी देते हैं।
अच्छा?
वो कहते हैं कि ये सारी कुरीतियां और बुरी परंपराएं असल में कागज के बने रावण की तरह हैं।
कागज का रावण? ये तो बहुत दिलचस्प उपमा है।
है ना? बाहर से देखने में ये रावण बहुत बड़ा, डरावना और मजबूत लगता है। उसकी शक्ल भयानक है, उसके हाथ में हथियार है, उसे देखकर लगता है कि इससे लड़ना नामुमकिन है। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखला है, उसमें सिर्फ कागज और बांस की खपच्चियां हैं।
तो आप कह रही हैं कि ये सामाजिक कुरीतियां भी बाहर से मजबूत दिखती हैं पर अंदर से खोखली हैं।
बिल्कुल, हर समझदार व्यक्ति मन ही मन इनसे नफरत करता है, हर कोई इनसे छुटकारा पाना चाहता है।
पर हर कोई खुद को अकेला महसूस करता है।
हाँ, उसे डर लगता है कि अगर मैंने आवाज उठाई तो पूरा समाज मुझे अकेला कर देगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, और इसी अकेलेपन के डर से कोई पहला कदम नहीं उठाता।
ये बात तो बिल्कुल सही है, लोग क्या कहेंगे का डर सबसे बड़ा रोग है। लेकिन अगर रावण कागज का है तो उसे जलाया भी जा सकता है, तो समाधान क्या है?
समाधान है संगठित प्रतिरोध।
संगठित प्रतिरोध?
हाँ, एक चिंगारी से शायद वो कागज का रावण ना जले, पर अगर कुछ लोग मिलकर मशाल जला दें तो।
सत्संकल्प कहता है कि अगर कुछ विवेकशील लोग भी हिम्मत करके एक साथ खड़े हो जाएं और जमकर इनका विरोध करना शुरू कर दें,
तो ये रेत की दीवार की तरह ढह जाएंगी।
बिल्कुल, इन्हें गिराने के लिए बस एक संगठित धक्के की जरूरत है।
लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? कुछ परंपराएं तो हमारी पहचान और संस्कृति से इतनी गहराई से जुड़ी हैं, वो कागज जैसी नहीं बल्कि पत्थर की मजबूत दीवारों जैसी लगती हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है, और ये सच है कि वो पत्थर जैसी ही लगती हैं, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इंसानों की बनाई हर दीवार तोड़ी जा सकती है। जरा सोचिए, एक समय था जब सती प्रथा, दास प्रथा, देवदासी प्रथा,
बाल विवाह, पशु बलि,
हाँ, कितनी ही कुरीतियां थी जिन्हें धर्म और परंपरा का हिस्सा माना जाता था, वो भी पत्थर की दीवारें ही लगती थी।
सही बात है, आज उनके बारे में सोचकर भी डर लगता है, लेकिन वो कभी समाज की सच्चाई थी।
और आज वो कहाँ है? समाप्त हो गई। कैसे? क्योंकि कुछ विवेकशील लोगों ने आवाज उठाई, संगठित हुए और विचारों की एक क्रांति खड़ी कर दी।
एक वैचारिक क्रांति।
जी, पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन इसी बात को समर्पित था कि असली बदलाव हथियारों से नहीं, विचारों से आता है। पहले हमें लोगों के दिमाग को बदलना होगा, उनके सोचने का तरीका बदलना होगा। समाज के कार्य तो उसके बाद अपने आप बदल जाएंगे।
जैसे जैसे विवेक जागेगा, बेकार को छोड़ने और काम का अपनाने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी।
बिल्कुल।
तो ये तो हुई सिद्धांत की बात, और मुझे लगता है कि सिद्धांत तब तक पूरे नहीं होते जब तक असल जिंदगी के उदाहरण ना मिले। सत्संकल्प में विवेक को अमल में लाने के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, खासकर स्वामी विवेकानंद के जीवन से।
हाँ, और वो प्रसंग सच में आंखें खोल देने वाले हैं। पहला प्रसंग तब का है जब कलकत्ता में प्लेग फैला हुआ था।
अच्छा।
हजारों लोग मर रहे थे। उस समय स्वामी विवेकानंद अपनी सारी पूजा पाठ, ध्यान, साधना छोड़कर बीमारों की सेवा में लग गए। वो मरीजों की सफाई करते, दवा देते, उनकी देखभाल करते।
तो इस पर उनके साथियों की क्या प्रतिक्रिया थी?
उनके गुरु भाई ने उनसे पूछ ही लिया, स्वामी जी, आपकी साधना का क्या हुआ? आप तो ईश्वर का नाम जपने की जगह इन सब कामों में लग गए। इस पर स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो विवेक का सार है। उन्होंने कहा, जब भगवान के ही बच्चे दुख में तड़प रहे हों और मैं आंख बंद करके उनका नाम जपता रहूं, क्या तुम ही इसे उपासना समझते हो?
वाह।
उन्होंने कहा, मेरे लिए तो इन जीवित पीड़ित मनुष्यों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है।
ये तो अद्भुत है। मतलब उन्होंने पूजा या उपासना के पारंपरिक विचार को चुनौती दी और उसे मानवता की सेवा से जोड़ दिया।
उन्होंने परंपरा के ऊपर अपने विवेक को रखा, जिसने कहा कि इस समय लोगों की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है।
बिल्कुल।
उन्होंने उपासना के प्रतीक को नहीं, उसके असली उद्देश्य को पकड़ा। और ऐसा ही एक और प्रसंग है जो और भी गहरा है। एक समय रामकृष्ण आश्रम के पास पैसों की बहुत कमी हो गई, आश्रम चलाना मुश्किल हो गया। तब स्वामी जी ने आश्रम की जमीन का एक टुकड़ा बेचने का फैसला किया।
अपने गुरु के नाम पर बने आश्रम की जमीन बेचना, ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा।
हाँ, एक शिष्य ने तो हैरान होकर उनसे पूछ ही लिया, महाराज, आप अपने गुरु का स्मारक बेचेंगे? सोचिए, उस शिष्य के लिए वो जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, वो गुरु की निशानी थी, एक पवित्र प्रतीक थी।
सही बात।
लेकिन स्वामी जी का जवाब वो विवेक की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा, मठ मंदिरों की स्थापना दुनिया की भलाई के लिए होती है। अगर आज इस जमीन को बेचकर उन पैसों का उपयोग किसी भले काम में होता है तो इसमें हर्जी क्या है?
मतलब उनके लिए मठ का उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण था, न कि मठ की इमारत। अगर उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतीक को बेचना भी पड़े तो वो सही है।
एकदम सही।
यही तो है परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व देना।
बिल्कुल। विवेक का यही अर्थ है, किसी भी चीज के पीछे के क्यों को समझना, सिर्फ क्या और कैसे में नहीं उलझे रहना।
तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमारा युग निर्माण सत्संकल्प का 14वां सूत्र असल में हमारे अंदर सोए हुए शेर यानी हमारे विवेक को जगाने का एक आवाहन है।
जी,
ये हमें भेड़ चाल से निकालकर अपने जीवन का चरवाहा बनने की प्रेरणा देता है।
ये हमें सिखाता है कि हर परंपरा, हर रीति, हर आदत को आंख बंद करके स्वीकार मत करो, उसे तर्क, उपयोगिता और सबसे बढ़कर मानवता की कसौटी पर कसो।
और अगर वो इन पैमानों पर खरी उतरती है तो उसे सम्मान दो।
और अगर वो खोखली, हानिकारक या बेमतलब साबित होती है तो उसे छोड़ने की हिम्मत जुटाओ।
ये वास्तव में पशु की तरह नकल करने वाले जीवन से देवता की तरह विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले जीवन की ओर एक यात्रा है।
बिल्कुल। ये अपने जीवन के फैसले दूसरों की देखा देखी नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और आत्मा की आवाज पर लेने का संकल्प है।
और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे।
सत्संकल्प में एक पंक्ति है, दूसरों को सुधारना कठिन हो सकता है पर अपने को क्यों नहीं सुधारा जा सकेगा। इसी से जुड़ा हमारा सवाल है, हमारे अपने जीवन में वो कौन सी खोखली परंपरा या आदत रूपी कागज का रावण है जिससे हम अंदर ही अंदर नफरत तो करते हैं लेकिन उसे चुनौती देने या जलाने से डरते हैं? और उसे भस्म करने के लिए हम अपने विवेक की पहली चिंगारी कब और कैसे जला सकते हैं?